मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 11 सितंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और आप सबके साथ ही साथ मुझे विशेष रूप से हर्ष हो रहा है अपने उन 11 नौजवान साथियों का स्वागत करते हुए जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं नितेश शर्मा दिल्ली से, श्याम सुंदर कुमार मोतिहारी बिहार से, शुभम पटेल इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, बबलू कुमार पश्चिम चंपारण बिहार से, राज नंदनी पटेल जबलपुर मध्य प्रदेश से, सोनू कुमार वर्मा वाराणसी उत्तर प्रदेश से, विनोद सिंह ग्वालियर मध्य प्रदेश से, मनिंद्र शाही मऊ उत्तर प्रदेश से, रणविजय कुमार हिलसा बिहार से, सुरेश कुमार जालोर राजस्थान से, पुजारा नवीन चंद्रा आदिपुर गुजरात से। तो नितेश, श्याम सुंदर, शुभम, बबलू, राजनंदनी, सोनू, विनोद, मनिंद्र, रणविजय, सुरेश और पुजारा, आप सभी 11 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, एक सूचना है और ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और यह सूचना उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली क्लासेस के लिए आ रहे हैं। प्लीज इस सूचना को ध्यान से सुने और उस पर एक्शन भी लें। सूचना यह है फ्रेंड्स कि जो भी स्टूडेंट अक्टूबर में यहां क्लास अटेंड करने आ रहे हैं उन सभी का एडमिशन फॉर्म वेबसाइट afis.com के टॉप पर डाल दिया गया है। afis.com जो वेबसाइट है उसके टॉप पर ही एडमिशन फॉर्म डाला हुआ है, अभी डाल दिया गया है और उनसे कहा गया है कि वो 17 तारीख से पहले पहले अपना यह एडमिशन फॉर्म फिलअप करके भेज दें। मतलब आपको ऑनलाइन ही उसे सेंड करना है। मित्रों, उसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं, फॉर्म बहुत सरल है, आसान है, आप सब बहुत ध्यान से उसे पढ़ें, समझें और भरकर भेजें। और इस एडमिशन फॉर्म में आप देखेंगे कि स्टूडेंट लगातार पूछते रहे हैं कि एकोमोडेशन की क्या व्यवस्था है, क्या होगा, कैसे होगा, और चिंता आप सबकी जायज है। तो मित्रों, उसमें आप पाएंगे कि एकोमोडेशन की डिटेल्स आपसे पूछी गई है, आपको चाहिए नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो फिर किस कैटेगरी का चाहिए। तो उस
एडमिशन फॉर्म
को आप सब बहुत ध्यान से पढ़ें और जल्दी से जल्दी भेजें। और सच पूछे मित्रों, तो इसी के साथ ही हम लोगों की जो ट्रेनिंग है या कह लीजिए क्लास है ना, वो शुरू हो जाती है। शुरू इस मायने में हो जाती है, जैसे देखिए कि आपको डेट 17 तारीख तक की दी गई है कि 17 तारीख से पहले पहले भेजना है, 17 तारीख तक भेज देना है, लेकिन आप उससे पहले भी भेज सकते हैं, राइट। तो हम करते क्या है, करते यह है कि आज 11 तारीख है तो लगता है यार अभी तो 6 दिन बाकी है, चलो बाद में कर लेंगे, बाद में भेज देंगे। और पता लगा कि वो 16 को 17 को भेज रहे हैं और कुछ लोग तो 17 को भी भूल गए तो 18 को भेज रहे हैं, कुछ लोग भूल ही गए कि भेजना भी है। मित्रों, यह होता है और यह मानव स्वभाव है और हम सब मानव ही हैं। फ्रेंड्स, आप क्लास में आ रहे हैं, आपका एक विश्वास है, आप एक आस्था और विश्वास लेकर आ रहे हैं और यह आस्था और विश्वास तभी सच हो सकेगा जब आप एकेडमी के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। क्योंकि यहां केवल ज्ञान की बात नहीं है, केवल सिविल सर्विस की तैयारी कैसे करें यही बात नहीं है, यह तो मुख्य रूप से है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व के निर्माण की भी बात है कि आप एक नया व्यक्तित्व लेकर यहां से जाएं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, जो हमारी पुरानी आदतें हैं, जो गलत आदतें हैं, जो निगेटिव चीजें हैं, जो हमें असफलताओं से दूर करती हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी और वो इंस्ट्रक्शन के जरिए ही होगा और आप तभी उनको दूर कर सकेंगे जब आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। तो मित्रों, यह इंस्ट्रक्शन है कि आप देखें फॉर्म और प्रायोरिटी पर इसे करें, क्योंकि आपकी अभी एक टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। टॉप प्रायोरिटी इस मायने में कि अब आप क्लास आने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब आप यहां हैं तो आप यहीं होंगे, आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरना आपकी टॉप प्रायोरिटी में आना चाहिए। साथ ही एक बात और मित्रों, हम लोगों ने देखा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो डेली ऑडियो लेक्चर को फॉलो नहीं करते, वेबसाइट पर भी डेली नहीं जाते, हालांकि वो क्लास में आते हैं, राइट। तो उनको ये जानकारी नहीं हो पाती कि ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी डाल दिया गया है जो उन्हें भरकर भेजना है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके अगर कोई परिचित हैं जो क्लासेस में आ रहे हैं तो प्लीज उनको भी यह सूचना दें, आपस में इस सूचना को शेयर करें कि भाई वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेबसाइट पर अवेलेबल हो गया है और वो हमें जल्दी से जल्दी भरकर भेजना है, क्योंकि आप हमारा जितना सहयोग करेंगे, सच पूछे तो व्यवस्था करने में हमको उतनी ही ज्यादा मदद मिलेगी। तो मित्रों, इस बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के बाद अब मैं मुख्य विषय की तरफ थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज हम लोग विवेकानंद जी पर कुछ बातें करेंगे। मैंने यह विषय क्यों चुना है, मैं बाद में आपसे इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए जो एक दो जो थोड़ी सी जो खबरें हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रेंड्स, दो खबरें हैं, छोटी छोटी खबरें हैं। एक इरमा तूफान को लेकर के खबर आपके रेडियो न्यूज में भी थी और आपने देखा कि वो दूरदर्शन न्यूज पर भी है। इससे पहले आपको मालूम है कि एक और तूफान जो है ना अमेरिका झेल चुका है, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की भी थी, राइट। मित्रों, हार्वे तूफान इससे पहले आ चुका है, जो आपके जिसने वहां के ह्यूस्टन वगैरह को प्रभावित किया था, टेक्सास को प्रभावित किया था, और ये इरमा तूफान है जो दक्षिण अमेरिका का जो द्वीप है, मतलब अमेरिका का दक्षिण भाग, दक्षिण अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट नहीं। आपको मालूम है कि जो अमेरिका जब हम बात करते हैं तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और हम जब दक्षिण अमेरिका कहते हैं तो दक्षिण अमेरिका अपने आप में एक महाद्वीप है, जिसके ज्यादातर देश लैटिन अमेरिका के नाम से जाने जाते हैं। तो ये अमेरिका का दक्षिण भाग, अमेरिका के दक्षिण भाग को इसने प्रभावित किया है, और आप न्यूज में आपने काफी कुछ सुना भी है। यहां मैं आपसे स्पेशली एक बात कहने जा रहा हूं, जो मैं इससे पहले भी कहता रहा हूं फ्रेंड्स, और वो यह कि आप ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करेंगे। नो डाउट आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है, दूसरी किताबें भी अगर आपको पसंद हैं तो असिस्ट करने के लिए आप दूसरी किताबें भी पढ़ेंगे, लेकिन जो बेस्ट तरीका है उसके साथ ही साथ, यानी कि उसका विकल्प ये है, नॉट एट ऑल। ये होता है कि जब कुछ इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो हम उस पर फिर विशेष तैयारी कर लेते हैं। जैसे अभी तूफान इरमा तूफान आया, इससे पहले हार्वे आया था, तो पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए कि भैया तूफान आते कैसे हैं, तो वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, तूफान वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर जब इस तरह के तूफान आते हैं और हम अखबारों में या न्यूज में पढ़ते सुनते हैं कि इस तूफान यह तूफान इस क्षेत्र में आया, यहां से उठा था, यहां नुकसान कर रहा है, तो फिर हमें चाहिए बिल्कुल आलस्य त्याग कर कि हम एटलस उठाएं या नक्शे पर जाएं और हम देखें उन जगहों को, हम स्पॉट करें कि भाई जो जिस जगह को ये मेंशन कर रहे हैं वो जगह है कहां। फिर आप देखेंगे कि आपके दिमाग में चीजें एकदम अलग तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी, एकदम अलग तरीके से, और आप कल्पना नहीं कर सकते कि केवल ये 5-10 मिनट जो आप लगाएंगे, खुद को थोड़ी सी तकलीफ देंगे, ये आपको नॉलेज की दृष्टि से और स्पेशली सिविल सर्विस के प्रिपरेशन की दृष्टि से कितना ज्यादा स्ट्रांग बना देंगे, यू कांट इवन इमेजिन। सच पूछे तो जब आप करने लगेंगे तब आप इसे समझ पाएंगे कि वास्तव में ये कितना महत्वपूर्ण है। तो जब आप साउथ अमेरिका के साउथ वाले हिस्से को देखेंगे तो देखेंगे एक पतली सी नाक जैसा जैसे जो हिस्सा है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो इरमा जो तूफान है वो अटलांटिक महासागर में उठा है, आपका एक तैयार हो गया। फिर आप देखेंगे कि इसमें कुछ शहर के नाम लिए जा रहे हैं कि वहां के लोगों को कहा जा रहा है कि आप छोड़ छोड़ करके जाइए, जिसमें मियामी का नाम है, जिसमें टेम्पा का नाम आपने सुना होगा, बहामाज का नाम आपने सुना होगा, फिर कैरेबियाई देशों में ये पहले ही तबाही मचा चुका है, ये सब आप न्यूज में सुन रहे हैं भूल जा रहे हैं, दिमाग में नहीं रह रहा है। लेकिन जब आप इसे न्यूज में देख सुनने के बाद आप एटलस पर देख लेंगे तो फिर आप पाएंगे कि अरे बाप रे, तो सारी चीजें एकदम बदल चुकी है। तो मित्रों, ये आपको प्लीज करना चाहिए। तो पहली खबर थी इरमा तूफान के बारे में, और जो दूसरी छोटी सी खबर है फ्रेंड्स, सिविल सर्विस के लिए तो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन जो स्टेट सिविल सर्विस या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है, वो नाविका सागर परिक्रमा की खबर आपने सुनी है। इसमें समुद्री मार्ग से विश्व परिक्रमा पर निकली है हमारी जो कुछ महिला नेवी ऑफिसर्स हैं वो, और ये INS तारिणी के माध्यम से वो पूरी परिक्रमा, उस परिक्रमा को पूरा कर रही है। तो तारिणी शब्द आपको मालूम हो और नाविक सागर परिक्रमा ये क्या है, नाविका सागर परिक्रमा ये आपको मालूम होना चाहिए। दैट्स ऑल, थोड़ी सी जानकारी आपको हो। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं विवेकानंद जी पर। देखिए, आज 11 सितंबर है, आपने अखबारों में भी पढ़ा है। आज से 125 साल पहले 1893 में शिकागो में, जो अमेरिका का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, वहां विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपना विश्व प्रसिद्ध व्याख्यान दिया था। राइट, वो व्याख्यान अवेलेबल है और उसका छोटा सा जो अंश है दैनिक भास्कर में आज छपा हुआ है, तो वो भी मैं आपको डाल रहा हूं। और इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप उसे थोड़ा सा जरूर पढ़ें, उसको पढ़ेंगे तो आपको विवेकानंद जी की जो विचार पद्धति है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। मित्रों, मैं विवेकानंद जी की बायोग्राफी पर नहीं जा रहा हूं, है ना, लेकिन इतना मैं जरूर बताना चाहूंगा कि विवेकानंद केवल 39 ईयर्स तक इस धरती पर रहे, मात्र 39 ईयर्स। इनका जो पीरियड रहा है दोस्तों, 1863 में जन्म है और 1902 में निधन है, मात्र 39 ईयर्स। और 39 ईयर्स में विश्व व्यक्तित्व के रूप में उभर जाना बहुत बड़ी बात है। और आपको मालूम है कि जो 12 जनवरी इनकी जन्मतिथि है उसको युवा दिवस के रूप में हमारा देश मनाता है। और चूंकि अब 125वें वर्ष की शुरुआत हो रही है तो इस पर भी अब कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो पहली बात तो यह है कि 125 वर्ष पूरे हुए हैं तो विवेकानंद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक बन जाते हैं। दूसरी बात यह फ्रेंड्स कि जो आपके मेंस का फोर्थ पेपर है, जो एप्टीट्यूड इंटीग्रिटी से रिलेटेड जो पेपर है, उसमें आप देखेंगे कि सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है महत्वपूर्ण विचारकों के बारे में आपको जानना है, महत्वपूर्ण विचारक। तो बटने चौड़े कि उन महत्वपूर्ण विचारकों में जो मॉडर्न थिंकर्स हुए हैं उसमें विवेकानंद एक बहुत ही आप कह लीजिए कि माइलस्टोन की तरह बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं। तो आपको विवेकानंद के विचारों के बारे में जानना चाहिए। एक और बात है कि आपका जो जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर है, मेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें जब आप फ्रीडम मूवमेंट को देखेंगे, जब सोशल रिफॉर्म वाले चैप्टर पर आएंगे जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती वगैरह से शुरुआत होती है, तो फिर उसमें विवेकानंद भी आ जाते हैं। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस, इस रामकृष्ण मठ की उन्होंने स्थापना की। और सच पूछे तो ये जो मठ है ये कोई धार्मिक मठ उस तरीके से नहीं था कि कोई धर्म की शिक्षा दी जा रही है, कोई पंथ या संप्रदाय का गठन किया जा रहा है, उसकी नींव रखी जा रही है, नॉट एट ऑल। ये पूरी तरीके से जो रामकृष्ण परमहंस का मठ है ये केवल सेवा भावना से प्रेरित है, सेवा भावना से प्रेरित है। तो फर्स्ट पेपर के लिए भी विवेकानंद बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फोर्थ पेपर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो तो ऑलरेडी हैं ही। लेकिन चूंकि 125 वर्ष उनके विश्व धर्म सम्मेलन के उद्बोधन के शुरुआत हुई है अभी और पूरे देश में मनाया जाएगा, तो विवेकानंद अपने आप में इस साल के सिविल सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सिविल सर्विस के लिए एक कैसे हम अपने लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स छांटें, उसका एक मैंने मैकेनिज्म आपको बताया है, फार्मूला बताया है। इस आधार पर आप बहुत से टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि खासकर अपने डेली ऑडियो लेक्चर में मैं इस तरह की कुछ बातें करता हूं कि ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी बताने की कोशिश करता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तभी आप इसे समझ सकेंगे कि भाई हम आप अपनी तरफ से यूं कह लीजिए कि कोई क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और वो कैपेसिटी फिर आप में आ सकेगी कि आप अपने आप इसे कर सके। दोस्तों, जो विवेकानंद की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें रही हैं, मैं दो तीन बातें केवल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि इन्होंने बेसिकली जो सर्विस टू ह्यूमैनिटी है, जो मानवता की सेवा है, मानवता की सेवा को धर्म का सबसे बड़ा तत्व माना। मतलब यूं कह लीजिए कि वो सेवा को ही धर्म के रूप में परिभाषित किया, और धर्म की एक अलग तरीके से उन्होंने व्याख्या भी की। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है और उसे आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं तो इससे बड़ा उसका कोई दूसरा अपमान नहीं हो सकता। सोचिए, और ये उसके आत्मसम्मान पर की लग कर पहुंचाई गई सबसे बड़ी चोट है। विवेकानंद ने यह सीधे सीधे कहा, यानी कि जो गरीबी है उसके खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे पहला संघर्ष भारत में छेड़ा जाना चाहिए। गरीबी को बहुत बड़ा भारत का दुर्भाग्य मानते थे। दूसरी बात उन्होंने ये कही फ्रेंड्स, उस समय जो फ्रीडम मूवमेंट का दौर था, फ्रीडम मूवमेंट के दौर के समय में जो भारत का जो आत्मविश्वास था उसे बढ़ाने में विवेकानंद का बहुत ही अद्भुत योगदान रहा है। देखिए, हम अंग्रेजों द्वारा शासित होते थे, अंग्रेज अपने को बहुत सुपीरियर समझते थे और अपने को सुपीरियर हो चुकी समझते थे तो बट नेचुरल है कि जो हमारी संस्कृति है उसको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। और अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि हमारी संस्कृति में उनको कुछ ऐसे तत्व मिल भी जाते थे कि वो उनका सहारा लेकर के हमें थोड़ा सा पिछड़ा हुआ घोषित करते थे। जैसे ही विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय दर्शन के मूल तत्वों को रखा और खासकर सर्वधर्म समभाव की जो हमारी अवधारणा है कि कैसे सदियों से शुरू से ही भारत में दूसरे दूसरे धर्म के लोग आते रहे, भारत ने उन्हें बकायदे शरण दी, शरण ही नहीं दी बल्कि गले लगाया और उन्हें अपने आप में मिला लिया और उनके भी तत्व उसने अपने में मिलाए। जब ये बात दुनिया को पता लगी तो सच पूछिए तो दो चीजें हुई। पहली बात तो यह है कि भारत के बारे में जो पश्चिम के लोग थे, जो एक तरीके से यूं कह लीजिए कि गलत अवधारणाएं लेकर के चल रहे थे, उनकी अवधारणा बदली। उनको लगा कि नहीं, भारत केवल गोबर और सपेरों का देश नहीं है, गोबर का ढेर नहीं है यानी कि गंदगी, और केवल सपेरों का देश या अंधविश्वासियों का देश नहीं है, सांस्कृतिक रूप से बहुत महान है। और जब पश्चिमी देशों ने थोड़ा सा स्वीकार करना शुरू किया तो बट नेचुरल है कि इससे हमारे जो भारतवासी थे उनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा। उनको लगा कि नहीं, जो बताया जा रहा है इन अंग्रेजों के द्वारा वही हम नहीं है। मतलब उन्हें अपनी संस्कृति पर प्राइड हुआ। और बट नेचुरल है कि जब आपको अपने पर गर्व की अनुभूति होती है तब आप स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और ज्यादा जोश खरोश के साथ आगे बढ़ते हैं। और हुआ यह कि विवेकानंद ने घूम घूम कर जो बातें कही मित्रों, तो एक तरीके से मुझे लगता है कि जो देशभक्ति का जो उस समय जज्बा था, देशभक्ति की जो भावना थी, उसको उन्होंने एक तरीके से आध्यात्मिक रूप दे दिया। क्योंकि उनके लिए देश की आराधना ही ईश्वरी आराधना बन गई, मनुष्य की सेवा ही परम धर्म बन गया। उन्होंने तो बल्कि ये तक कहा कि ये जो धार्मिक पाखंड हैं इनसे ज्यादा अच्छे वो लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते, जो अनिश्वरवादी है वो ज्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि उनसे आप कुछ काम तो ले सकते हैं, वो लोगों को बरगला तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो अंधविश्वासी हैं इनसे तो आप कुछ काम ही नहीं ले सकते, ये लोगों को बरगलाने का ही काम करते हैं, तो ज्यादा अच्छा है कि आप फिर ईश्वर को मानिए ही मत। और अगर ईश्वर को मानते हैं तो वह सच पूछे तो मानवता की सेवा से बढ़कर और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इन्होंने एक तरीके से धर्म की बहुत ही तर्कवादी व्याख्या की, बहुत ही बुद्धिवादी व्याख्या की। इनके लिए धर्म सीधे सीधे आस्था और विश्वास की चीज नहीं रह गई, अनुभूति की चीज नहीं रह गई, वो अलग स्टेज पर वो आएगी, लेकिन उसकी जो शुरुआत होनी चाहिए वो तर्क के आधार पर होनी चाहिए, बुद्ध के आधार पर होनी चाहिए। जैसा गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेरी बात को सच मत मानो, परखो। विवेकानंद ने यही बात कही कि किसी जो कोई कह रहा है उसे सुनो पढ़ो, लेकिन मत मान लो कि वो कह रहा है, आप उसे परखिए, अपने तरफ से सोचिए और फिर अपने ढंग से उसे स्वीकार कीजिए। तो दोस्तों, आप ये कह लीजिए कि भारतीय चेतना में एक नई सोच का संचार करने की दृष्टि से विवेकानंद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मित्रों, ये मैंने उनके जो विचार थे, उनके विचारों का जो केंद्र बिंदु था वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। और मैं चाहूंगा कि चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो विवेकानंद जी पर आपको अगर थोड़ा बहुत कहीं मिलता है और बहुत चीजें अवेलेबल हैं तो ये टॉपिक आपको तैयार कर लेना चाहिए। मित्रों, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, आज बहुत थोड़ी सी क्लिपिंग्स हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग सभी देख लेंगे। अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं इंदर कुमियाल, विशाल कुमार गुप्ता बादशाहपुर उत्तर प्रदेश, रितेश झा सुपौल बिहार, राहुल शर्मा लखनऊ उत्तर प्रदेश, भाविक चौहान गुजरात, मनु कुमार कुशीनगर उत्तर प्रदेश, मानसी सिंह, मंजय कुमार, राजा राम पलवल हरियाणा, नूतन कुमारी और शिवांगी गुप्ता, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।